मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 2 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक विशेष नौजवान साथी का जिनका नाम है डॉक्टर हिफजान खान, जो गांव मुंदला उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, एक सूचना मुझे आप सबको देनी है और सच यह है कि आपको यह सूचना मिल भी चुकी होगी और वह यह है कि UPSC ने बकायदे प्री एग्जामिनेशन के आपके एडमिट कार्ड भेज दिए, मतलब बकायदे ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके वेबसाइट पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खासकर इस सूचना को देने का जो मेरा उद्देश्य है व्यक्तिगत तौर पर वह यह है कि चूंकि UPSC ने अब एडमिट कार्ड्स भेज दिए हैं तो इससे अब यह संभावना अपेक्षाकृत काफी अधिक हो गई है कि 4 अक्टूबर को प्री एग्जामिनेशन होंगे। और ठीक एक घटना और भी घटित हो चुकी है। कल के दिन आपने देखा कि जो JEE मेन्स के एग्जामिनेशन है वो पूरे देश में हुए, उनमें जो बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या थी वह भी कोई कम नहीं थी। पूरे देश में ये परीक्षाएं हुई हैं, उनके लिए इतने सारे केंद्र बनाए गए थे। तो उसमें एक दिमाग में ये सवाल उठता है कि जब JEE मेन्स की परीक्षाएं ली जा सकती हैं तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की परीक्षा क्यों नहीं ली जा सकती। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ईमानदारी के साथ इस अटेम्प्ट को देना चाहते हैं उनके लिए फिर से थोड़ा सा अतिरिक्त रूप से गंभीर और सतर्क हो जाने का समय आ गया है कि उन्हें ये मान ही लेना चाहिए कमोवेश कि 4 अक्टूबर को वो प्री एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। इसके स्थगित होने की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम होती जा रही हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे पेंगोंग लेक इसके ऊपर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने में जब हम घटनाओं की बात करते हैं, उनकी भूमिका की बात करते हैं, तो दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक घटनाएं वे होती हैं जो अपने आप में बड़ी घटना होती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अपने आप में वो घटना इतनी बड़ी है कि वो स्वतंत्र है और उसी पर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कोरोना को लेकर के घटना में कोरोना को एक घटना मान लेते हैं, इस पर लेकर कोई प्रश्न बनाया जाता है तो कोरोना अपने आप में एक बड़ी घटना है, तो उस पर एक स्वतंत्र प्रश्न बन गया। लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो उन पर अलग से बात भी अक्सर नहीं की जाती है, और सच पूछे तो इन छोटी छोटी घटनाओं को आधार बनाकर के कोई स्वतंत्र प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। तो फिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि फिर ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देने की जरूरत ही क्या है। दोस्तों, इनकी जरूरत होती है। ये घटनाएं छोटी जरूर होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं आपके प्रश्नों के उत्तर में आपकी बहुत बड़ी मददगार सिद्ध होती हैं। यहां तक कि यदि आप इन छोटी छोटी घटनाओं को नहीं जान रहे हैं तो इनफैक्ट सही तरीके से आप उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाएंगे, और एग्जामिनर आपके उत्तर को जांचते समय इस बात की खोज करता रहता है कि आपने उन छोटी घटनाओं की तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया है। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं ऐसी कुछ छोटी घटनाओं की बात करता हूं जो पिछले 3-4 दिनों में घटित हुई हैं। जैसे संघात्मक सरकार है ना, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर रहा है उस पर आप देखिए कि अक्सर 1-2 साल में प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मुख्य एग्जामिनेशन जब भी होगा UPSC का, तो उसमें मान लीजिए कि संघात्मक स्वरूप के बारे में कुछ पूछ लिया गया। तो अब आप जब संघात्मक स्वरूप के बारे में जब उदाहरण देंगे तो उदाहरण कौन से होंगे? उदाहरण होंगे अभी फिलहाल राज्यपाल ने किस तरह से राज्य सरकारों के साथ व्यवहार किया, वो उदाहरण होगा। फिर अभी अभी आप देखिए कि जो लॉकडाउन 4 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें केंद्र सरकार ने राज्यों से अधिकार वापस ले लिए हैं कि वो अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगा सकते हैं। वे केवल जो कंटेनमेंट एरिया है केवल वहां लॉकडाउन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, राज्यों के अधिकार वापस ले लिए गए। जबकि आप देख रहे हैं कि बहुत से राज्य अभी कोरोना से बहुत जबरदस्त रूप से जूझ रहे हैं। अब जूझने का काम उनका है, व्यवस्था करने का दायित्व उनका है, तो वो लॉकडाउन, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं लगा सकते, तो ये भी कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है। देख रहे हैं कि कोरोना के दौर में पूरे जीएसटी की बहुत कम संग्रहण हो पा रहा है जीएसटी का, तो राज्य सरकारों की आमदनी बहुत कम हो गई है, जबकि उनके खर्चे बढ़ गए हैं। अब राज्य सरकार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इसके लिए फिर केंद्र सरकार ने कहा कि आप बकायदे आरबीआई से कर्जा वर्जा ले सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूं, संघात्मक सरकार के तहत राज्यों के पास इसके अंतर्गत कोई ऐसे अधिकार है नहीं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, उसने यह निर्णय लिया है, राज्य इससे भी अस्वीकार कर रहे हैं। तो अब आप इन दो तीन घटनाओं के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि जो राज्य हैं वो हमारे कितने स्वतंत्र हैं, कितने स्वायत्त हैं, तो ये संघात्मकता का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह से आप देखें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि जो महाकाल का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, हमारा ज्योतिर्लिंग है, कि वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर आप पंचामृत नहीं चढ़ाएंगे, उस शिवलिंग को आप रगड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको दूध चढ़ाना है तो आप दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन वह दूध भी जो है मंदिर के प्रबंधन द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वह जो शिवलिंग है उसका क्षरण न हो। ठीक है, हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक आस्थाएं हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक हमने पत्थर को शिवलिंग माना है और अपनी भावनाओं का संचार करके उसे देवत्व के रूप में स्वीकार किया है, ये हमारी आस्था है। लेकिन सत्य तो सत्य है, उसका क्षरण तो होगा अगर हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो। हाँ, आस्था है, आस्था के आधार पर आप कह सकते हैं कि नहीं कभी क्षरण नहीं होगा, हजारों साल से है अभी तक क्षरण नहीं हुआ है, वो एक बात अलग है, लेकिन हम यहां सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो चूंकि उन्होंने माना कि इसका क्षरण होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, पंचामृत नहीं चढ़ाया जाएगा, उसे रगड़ा नहीं जाएगा। अब आप देखें कि यह एक धार्मिक आस्था पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो आप इसे न्यायिक सक्रियता में ले सकते हैं, फिर आप इसे धर्म की वैज्ञानिकता में भी ले सकते हैं, और फिर आप इस रूप में भी ले सकते हैं कि भाई जो हमारे मंदिर का प्रबंधन है वह भी इस तरह की व्यवस्था अपने आधार पर क्यों नहीं करता है, वो खुद भी तो सोच सकता है, उसके लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। तो यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, देखिए अपने आप में भले ही इनको आधार बना करके प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन जो दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जब आप इनकी चर्चा करते हैं तो आपका जो उत्तर होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मुझे आपको कुछ बातें स्पेशली बतानी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो है पेंगोंग लेक। दोस्तों, आप सीधी सी बात है कि ये आपके ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ विषय है। सामान्यतया ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर आप पाएंगे तो वो स्टैटिक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी किताबों में आप पढ़ते हैं, प्री में भी उसी से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, और मेंस में भी उसी से आते हैं, लेकिन प्री में कहीं ना कहीं करंट से प्रश्न होते हैं। अब वो करंट से किस तरीके के प्रश्न होते हैं, उसमें एक प्रश्न आप इस पेंगोंग लेक को भी मान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि दो तीन दिनों से अखबार में लगातार पेंगोंग लेक की चर्चा हो रही है। देखिए, अखबार तो अपने ढंग से उसके बारे में लिख रहे हैं, उसमें जब आप उस पर डिपेंड कर जाएंगे अखबार पर, तो आपको यही मिलेगा कि पूर्वी लद्दाख में ये हमारा जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके आसपास ये पेंगोंग लेक है ना, उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान की जो भारत और सॉरी चीन की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के आमने सामने है, इस तरह की ढेर सारी बातें आप सुन रहे हैं। जो सही तैयारी करने वाला स्टूडेंट होगा उसके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि नहीं, पेंगोंग लेक की चूंकि बार बार चर्चा हो रही है, न्यूज में भी आ रहा है, तो मुझे पेंगोंग लेक के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि क्या है, किस तरह का लेक है। तो दोस्तों, जब आप पेंगोंग लेक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको किताबों में ये तथ्य शायद ही मिले, पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जो मैगजीन्स आती हैं मैगजीन्स शायद इसके बारे में कुछ बताए, तो यहां थोड़ी सतर्कता की जरूरत होती है। अब जब आप पेंगोंग लेक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पेंगोंग लेक किस तरह का लेक है, किस तरह की झील है। अंग्रेजी में ये है एंडोरहेइक लेक, ENDOREHEIC लेक, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेक है ये। हिंदी में इसका नाम है समावृत जल संभर, या आप कह सकते बंद जल संभर। इंग्लिश के आधार को तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी में जो इसका शब्द है, देखिए उसमें पूरी तरह से इसका चरित्र निहित है। समावृत मतलब चारों ओर से समान रूप से आवृत, यानी कि वो ढका हुआ है, बंधा हुआ है, यहां हम बंधा हुआ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, या एक शब्द आपको हिंदी में मिलेगा बंद जल संभर, यानी कि जो जल है, जो पानी है, पानी का जो प्रवाह होता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। और समावृत शब्द से भी यही है कि पानी का प्रवाह जहां से जिस तरीके से होना चाहिए तो उसके प्रवाह को रोक दिया गया है, आवृत कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एंडोरहेइक होते हैं, लेक होते हैं, समावृत जो जल संभर होते हैं या झील होती है, वो इस तरह की झील होती है कि उसमें जो भी पानी आता है, यानी कि उस स्थान पर जब वर्षा का जल आता है, तो वो वर्षा का जल बहकर एक पर्टिकुलर सीमा के बाहर नहीं जा पाता। देखिए, वर्षा का जल क्या है, जमीन में समाता है, इसके बाद जो पानी है वो बह करके नालियों के जरिए छोटे नालों में चला जाएगा, फिर बड़ी नदियों में चला जाएगा, फिर झील में मिल जाएगा, खाड़ी में गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। इस तरह से वो पानी बह करके चला जाता है। लेकिन ये जो झील होती है, इसका पानी बहता नहीं है, किसी भी बाहर के वाटर बॉडीज में नहीं मिलता, ये वहीं रहता है, जमीन के अंदर समाता रहता है। लेकिन जमीन के अंदर भी कितना समाएगा, एक सीमा तक ही समा सकता है। तो फिर ये पानी जमा होने लगता है, और यही जमा हुआ जो पानी है वो हमें झील के रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं ये बहुत ही दलदली भूमि के रूप में दिखाई देगा। इसे ही हम कहते हैं समावृत जल संभर। तो ये जो पेंगोंग झील है वो इसी तरह की एक झील है। और अराल सागर का नाम आपने सुना होगा, कैस्पियन सागर का नाम आपने सुना होगा, ये भी इसी तरह के समावृत जल संभर है। तो दोस्तों, ये झील है, झील कहने पर लगता है कि छोटा सा ही उसका आकार होगा, लेकिन लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर की ये झील है। लंबाई में ये बहुत ज्यादा है, 134 किलोमीटर, और इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है वो केवल 5 किलोमीटर है। तो टोटल मिलाकर के 600 स्क्वायर किलोमीटर का ये की ये झील है। याद रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत साइड में है। तो दिमाग में ये भी हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में आपको उलझाने के लिए दे दें कि सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है, ये सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लैंड लॉक बेसिन है। और ये जो लैंड लॉक बेसिन जो मैंने कहा, यही है जल संभर, मतलब अपने आप में ये बंद है, इस तरह का ये एक बेसिन है, स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको पेंगोंग लेक के बारे में दी है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ज्योग्राफी की दृष्टि से हो सकती है। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के रूप में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अजय कुमार, चिराग ताम्रकर और अंकित राज मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।